مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ پاکستانی صحافت میں بھونچال کی کیفیت پر ہے جو ایگزیکٹ سافٹ ویئر کمپنی پر تحقیقات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ایف آئی اے انکوائری کے بولڈ ٹی وی چینل کی نشریات پر اثرات پر بات کریں گے۔ آگے چل کر ہم نجی میڈیا کے درمیان مقابلے کی وجہ سے صحافیوں اور صحافت پر اثرات پر بھی بات کریں گے، اور یہ ہمارا ریڈیو شو ہے لہٰذا آپ لوگ مفت کال کر کے اس میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ بول ٹی وی کے نمائندہ اعجاز خان ہیں جو بول ٹی وی کے بیورو چیف بھی ہیں کوئٹہ میں، اور ان کے ساتھ ہوں گے وائس چیئرمین پاک کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد آرائیں۔ ہم آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آئیے سب سے پہلے ایگزیکٹ کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایگزیکٹ پر تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ناصر محمود نے یہ رپورٹ فائل کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
جعلی ڈگریوں کی تحقیقات کے سلسلے میں ایف بی آئی اور انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جائے گا، وفاقی وزیر داخلہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے کہا ہے کہ جعلی ڈگریوں کی مبینہ فراہمی سے متعلق زیر تفتیش سافٹ ویئر کمپنی ایگزیکٹ کے بارے میں اب تک کی تحقیقات میں ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جن کے لیے امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور بین الاقوامی پولیس یعنی انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ ہفتے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کمپنی کے دفاتر سے قبضے میں لیے گئے آلات کی جانچ اور کمپنی کے کارکنوں سے تفتیش جاری ہے، اور آئندہ 10 روز میں اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔
کچھ ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جس کی وضاحت کے لیے آئندہ 2 روز میں امریکی ایجنسی ایف بی آئی کو خط لکھ رہی ہے تاکہ وہ ایف آئی اے کی امریکہ میں جو کچھ ہوا ہے یا جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں لیگل اسسٹنس دے یا قانونی امداد فراہم کرے۔ اس کے علاوہ ہم انٹرپول سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ جو یونیورسٹیز اس وقت ریڈار پہ آئی ہیں ان کی حوالے سے کچھ انفارمیشن ہمیں انٹرپول سے مل سکتی ہے۔ کچھ اور جو کیس اس وقت چل رہا ہے اس کی تشریح کے حوالے سے انٹرپول سے بھی ہم باقاعدہ ایک قانونی درخواست کر رہے ہیں۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں برطانیہ میں بھی متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا جائے گا، اور ان کے بقول اس تحقیقات کو بغیر کسی دباؤ کے مکمل شفاف انداز میں منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر میں انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستانی سافٹ ویئر کمپنی ایگزیکٹ دنیا بھر میں مبینہ طور پر جعلی تعلیمی اسناد فروخت کرتی ہے، اور اس طرح اس نے لاکھوں ڈالر کمائے ہیں۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی وزیر داخلہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو تفتیش کا حکم دیا، جس نے رواں ہفتے اس کمپنی کے راولپنڈی اور کراچی میں واقع دفاتر پر چھاپے مارے اور وہاں سے درجنوں کمپیوٹرز کو قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ ایگزیکٹ کمپنی نیو یارک ٹائمز کی خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس میں لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ بعض حلقوں کی جانب سے حکومت پر یہ کہہ کر بھی تنقید کی جا رہی تھی کہ اس نے یہ تفتیش ایک خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد شروع کی، جبکہ اسے پہلے ہی ایسے عناصر پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا،
بہت ساری ڈگریز تھیں وہ تو امریکنز کو دی گئیں، برٹش کو، عربز کو، مڈل ایسٹ میں بہت ساری۔ میں پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں یہ ساری چیزیں بہت ساری ڈائریکٹ ہو کے آئیں، بہت ساری جعلی ڈگریز وہاں اس وقت بھی یوز ہو رہی ہیں۔ امریکہ والے سوئے رہے، برطانیہ والے سوئے رہے، باقی یو اے ای والے سوئے رہے، ہمیں جب بھی نوٹس میں آیا ہم نے اس پہ ایکشن لیا۔
ایف آئی اے نے اس کمپنی کے بینک اکاؤنٹس تک رسائی کے لیے بھی عدالت سے اجازت حاصل کر لی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس معاملے میں رقوم کی غیر قانونی طور پر منتقلی کے بارے میں بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین خالد آرائیں سے۔ اور آرائیں صاحب، آپ کو خوش آمدید۔
جی،
अच्छा अभी आप चेयरमैन हो गए, अच्छा आपको मुबारक हो। ये बताइए कि बोल की जो टेस्ट ट्रांसमिशन है ये तो शुरू हो गई है, लेकिन सुनने वालों को बताएं कि वो क्या तवक्को कर सकते हैं कि बाकायदा नशरियात कब शुरू होंगी, या फिर ये कि ये नशरियात मशरूत हो गई हैं एग्जैक्ट के मुकद्दर पर।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि बोल के मामले पर पैमरा की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया कि इसको चलाया जाए या इसको बंद किया जाए, क्योंकि पैमरा के मुताबिक, क्योंकि जब किसी भी चैनल का जब ऑनर होना होता है तो उससे पहले पैमरा एक लेटर जारी करती है केबल ऑपरेटर्स को कि इस चैनल को लाइसेंस मिल गया है और इसको आप अपने केबल बुके में शामिल कर लीजिए। जहाँ तक मेरी इतलात है कि बोल टीवी का जो लाइसेंस है वो भी लिटिगेशन में रहे और हाईकोर्ट कराची हाईकोर्ट के अंदर किसी एक शख्स ने इन पर केस किया हुआ है कि ये जो जिस कंपनी के ऊपर लाइसेंस लिया गया है ये कंपनी मेरी है, तो क्योंकि इसका फैसला भी अभी तक नहीं हो पाया है, उसके ऑर्डर पर ये चीज चल रही है और पैमरा की तरफ से भी कोई वाजे नहीं है कि इनको लाइसेंस मिल गया है या नहीं मिला है।
अच्छा जी, इस वक्त हम बोल के एक नुमाइंदा एजाज खान की तरफ जाते हैं। एजाज खान, आप हमें ये बताएं कि जैसा कि आप भी जानते हैं और एग्जैक्ट पर जो तफ्तीश हुई है इस पर पूरी सहाफती बरादरी जो है हिल गई है, खास तौर पे बोल के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, आए इनको काम करने दिया जाएगा या नहीं, आपकी क्या इतलात हैं?
मतलब हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम बोल को यकम रमजान को लेकर आए, जैसे कि इसकी टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हो गई हुई है और ये यकम रमजान को इंशाल्लाह जो है फुल ब्लड जाएगा। इसमें अगर इस पे कोई रुकावट की जाती है या इससे पहले जो रेड्स की जा रही है एग्जैक्ट के ऑफिस पे जो रेड्स की जा रही है उसके बाद उसका रुख जो ना अभी बोल की तरफ मोड़ा जा रहा है, तो इससे ये लग रहा है कि मतलब इनकी कोशिश है कि किसी को बोल को आनियत ना जाने दिया जाए, जबकि ये कुछ जो है दो माह से जो है ना ये सर उठा रही थी, ऐसा नजर आ रहा था कि ऐसी सूरत हाल बनेगी। बिल्कुल उस वक्त ये उस टाइम पर जो है ये इन्होंने मतलब कॉन्ट्रोवर्सी ओपन हुई है जब बोल आनियर के जाने से तीन चार दिन पहले ये चीजें ओपन हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बोल से वाबस्ता साफी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 2500 से ज्यादा साफी बोल से वाबस्ता है, तो हम प्लेज है, हम भी ये वाफ करते हैं कि हम जो है ना बोल को हर सूरत में जो लेके आएंगे, क्योंकि हमें पता है इसके पीछे पीछे कॉन्स्पिरेसी जो है काम कर रही है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जिस तरह की इंक्वायरीज कर रही है उस तो बिल्कुल ओपनली नजर आ रहा है कि बाइस्ट है। सिंध हाईकोर्ट ने गुजश्ता रोज ये वर्डिक्ट दिया था, ये FIA हुकाम को हदायत की थी कि एग्जैक्ट कंपनी को हरास ना किया जाए। बोल और एग्जैक्ट अगर से अलहदा अलहदा एंटिटीज हैं, लेकिन इसके लेकिन बेसिकली बोल का जो है मतलब हमारे जो जितनी काम हो रहे थे एग्जैक्ट के ऑफिस से हो रहे थे, तो अगर बोल के खिलाफ इनको कोई सबूत नहीं मिलता, न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर कोई स्टोरी छपती है तो उस पे जो है गवर्नमेंट जागती है और उस पर एक्शन लेती है, तो ये एक अजीब हैरत अंगेज बात है। और बोल जो है बेसिकली एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को एक नया जो है वो उनकी तरक्की के नए बाब खोल रहा था, उनको फैसिलिटेट कर रहा था, उनको मतलब बेहतर मुस्तकबिल दिखा रहा था जर्नलिस्ट को।
एजाज खान, अब यकीनन हम पूरा घंटा इसी के बारे में बहस करेंगे, क्योंकि आप हम भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो अपनी नौकरियां खो देंगे अगर बोल बंद हो गया, लेकिन क्योंकि एक झगड़ा चल रहा है लिहाजा इसी हवाले से दोबारा आते हैं खालिद अराई की तरफ। अराई साहब ये बताएं, हमारे इल्म में जो बात है वो ये है कि बोल का जो नाम है वो एक मुतनाज़े बन गया था और जियो ने पहले उसको क्लेम करने की कोशिश की थी, बाद में बोल के जो लोग हैं उन्होंने एक लिटिगेशन एक सूट फाइल किया था। अब क्या यही लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये नाम वो दोबारा हासिल कर देंगे?
अच्छा नहीं देखिए, मैंने नाम का एतराज नहीं किया, ये कुछ और है, क्योंकि जो बोल टीवी है जैसे कि इसके बेच जो इसकी मदर बेस कंपनी है उसका नाम है लबैक टीवी प्राइवेट लिमिटेड।
अच्छा,
और लबैक के नाम से जो ये बेसिकली जो बोल टीवी का लाइसेंस है ये किसी और कंपनी का था, उन्होंने इस कंपनी पे शिफ्ट किया, जिस कंपनी पे शिफ्ट किया लबैक टीवी को, तो लबैक ट्रैवल लिमिट के ऊपर जो है एक और शख्स है जो कराची में जो है विक्रांत उनका नाम है, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर एक केस दाखिल किया हुआ है कि जिस कंपनी पर ये लाइसेंस है ये लाइसेंस दाखिल मेरा है, क्योंकि जिस शख्स ने उनको एग्जेट वालों को जो सेल किया था वो ऑलरेडी एक और शख्स को बेच चुका था और विद इन बीच के एग्रीमेंट तोड़ के वो उसने उसको दिया। दोनों का लिटिगेशन चल रहा है जो कि कराची सिंध हाईकोर्ट के अंदर ये चल रहा है। बाकी जो जियो ने इनके नाम पर एतराज किया वो इनका केस अलग है।
अच्छा।
तीसरा ये आपको मेरा पैमरा की तरफ से भी अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये दिस इज बोल चैनल लीगल है या इनलीगल है, अभी तक उस पैमरा खामोश बैठी हुई है। और जहाँ तक कोई भी चैनल पाकिस्तान में तरीका रहा है कि अगर कोई भी चैनल प्रेस ट्रांसमिशन भी शुरू करता है तो तब भी वो उससे पहले पैमरा से रजू करता है, पैमरा केबल ऑफ पाकिस्तान के तमाम केबल ऑपरेटर्स और एमएनडीएस ऑपरेटर्स को एक लेटर जारी करती है कि ये चैनल है, ये इस कंपनी का चैनल है और इन्होंने हमसे लाइसेंस अवार्ड ले लिया है और आप इनको अपने बुके में शामिल कीजिए। ये बात कर रहे हैं कि पहली तारीख को आना है, मगर इससे पहले केबल ऑपरेटर्स को जब तक हिदायत नहीं मिल पाएंगी पैमरा की तरफ से तो केबल ऑपरेटर तो बोल टीवी को नहीं चला पाएगा।
जी,
और इस तरह मुतनाजा खबरें जो आ रही हैं वो एग्जिट के हवाले से, कल भी मैं अखबार पढ़ रहा था कि जो बोल ने जो इक्विपमेंट मंगाए हैं आई थिंक वो क्या है, वो कैमरे हैं या वो है, वो भी जो है कस्टम ड्यूटी की अदा नहीं की गई, उसको भी को नोटिस आए हैं।
अच्छा।
इस तरह के मामला चल रहे हैं, मगर केबल ऑपरेटर्स का अपना मौकफ है, हम किसी का हम खिलाफ नहीं है, हमने तो पैमरा के रूल्स को फॉलो करना है।
बिल्कुल।
ये पैमरा की तरफ से जो आएगा तो हम किसी कहने पर रुकावट नहीं करेंगे, जिसको आएगा उसको हम जरूर चलाएंगे, मगर पाकिस्तानी अवाम में अब इनके लिए क्या जज्बात है इज्जत के लिए बोल के लिए उसके रद्द अमल के बाद
बिल्कुल सही है। आप हमारे साथ रहें। एजाज खान, आप बोल टीवी के नुमाइंदा हैं और हालांकि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट ने बोल टीवी छोड़ दिया जैसे कामरान खान हैं या अजहर अब्बास हैं, लेकिन आपने इस टेलीविजन को नहीं छोड़ा, ये बताइए कि आप वहां क्यों रह गए हैं और आपके ख्याल में जब सीनियर्स चले जाते हैं तो क्या इदारा कमजोर नहीं हो जाता?
यकीनन अजहर अब्बास साहब और कामरान साहब ये हमारे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, हमारे इनसे हमने जर्नलिज्म सीखी है, ये हमारे अच्छे रहनुमा हैं। हम मतलब ये देखते हैं कि बोल में और सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं जो कुछ जला रहे हैं इस टाइम पर, बोल की इस ट्रांसमिशन इस टाइम चल रही है। अराइन साहब ने जो भी बात की कि फर्स्ट तारीख नहीं, हम फर्स्ट रमजान की बात कर रहे हैं, 18 तारीख को जो है बोल फुल फ्लेज लॉन्च होगा फर्स्ट रमजान को, तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि मतलब यहाँ इस टाइम जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं वो भी सीनियर कैपेसिटी की हैसियत से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आमिर ज़िया हैं, नासिर बिन चुकाई, ऐसे बड़े जर्नलिस्ट यहाँ बैठ कर जो है इसको रन कर रहे हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स को माजी में रन करते आ रहे हैं।
जी 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 जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें क्योंकि हम चाहते हैं कि PFUJ के साबिक सरबरा परवेज शौकत को भी लें, और आप लोग जो ये रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं इसमें मुफ्त कॉल करके शरीक हो सकते हैं। हमारे कॉल करने का नंबर है 0800-777-89-0800-777-89। इस वक्त एक मुख्तसर ID ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdubhoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdubhoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urdubhoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urdubhoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सहाफत में भूचाल की कैफियत पर, जो एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर कंपनी पर तहकीकात के नतीजे में पैदा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद आराई हैं, जबकि बोल टीवी के ब्यूरो चीफ क्वेटा में एजाज खान हैं, और अनकरीब हमें ज्वाइन करेंगे PFUJ के साबिक सरबरा परवेज शौकत, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुशीर भी हैं, बल्कि बताया जा रहा है कि परवेज शौकत लाइन पर हैं। जी परवेज शौकत, आपको खुशामदीद। تو آپ نے سنا ہمارے ساتھ بول ٹی وی کے نمائندہ ہیں اور پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں, اور ان کا خالد آرائیں صاحب کا کہنا ہے کہ پیمرا نے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیا کہ بول کو وہ چلانے کے لیے راضی ہیں یا نہیں. دوسری طرف سے بول کے نمائندہ کہتے ہیں کہ وہ پر امید ہیں کہ بول ٹی وی چینل شروع ہو جائے گا. آپ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں ایک سینئر صحافی کی حیثیت سے کہ اس وقت میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے, اس سلسلے میں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بول کس طرح متاثر ہوا ہے ان میڈیا چینلز کے جھگڑے کی وجہ سے؟
بہت شکریہ جی. آج کل ایشو پاکستان میں یہی چل رہا ہے, ایگزیکٹ کا ایشو ہے, بول کا ایشو ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بول کے جتنے ایگزیکٹو تھے جو جیو سے ہائر کیے گئے تھے وہ سب انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, اور ابھی تو بہت سے معاملات حل ہونے ہیں ان کے بول کے انتظامیہ کے ان کے بارے میں. میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ بول شروع ہو سکے, اور چونکہ ابھی دوبارہ ان کو لوگوں کو ہائر کرنا ہے, اگر شروع بھی کریں اگر ان پہ کچھ چارج لگ جاتا ہے اور ان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا, بہت مشکل میں ہوگا. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جو جیو سے, اے آر وائی سے یا دوسرے چینلوں سے لوگ بھاری معاوضوں پہ لے کے گئے, ان میں بڑے لوگ جو ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں کامران خان, اظہر عباس اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں, ان کو تو شاید کہیں نہ کہیں کھپنے کا موقع مل جائے گا, لیکن جو بےچارے لوئر کلاس کے لوگ ہیں, رپورٹر ہیں, کیمرہ مین ہیں, ٹیکنیکل سٹاف ہے, اور بول والوں نے بالکل خالی کر دیے تھے نا چینلز کو, تو ان کی واپسی ذرا بڑا مشکل ہے. وہ بہت بڑا ایشو بن گیا اور بحران پیدا ہو گیا اس انڈسٹری میں, کیونکہ ان کی جگہ اچھے برے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کھپا لیے اپنے اپنے چینلز میں, کیونکہ جگہ بہت خالی تھی. اور اب وہ جو لوگ بول میں گئے ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بول نہ نکلا تو سینکڑوں کے حساب سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اور اب جو مالک اگر ان لوگوں کو لیں گے بھی تو اپنی شرائط پہ لیں گے, کم تنہاؤں پہ لیں گے, یا اگر ان میں سے کوئی اچھے لوگ انہوں نے رکھے بھی تو جو پہلے سے انہوں نے اکوموڈیٹ کر لی ہیں ان کو نکال دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا میں, اور ابھی وہ اخبار بھی نکالنا چاہ رہے تھے, یہ بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا.
پرویز شوکت, آپ یہ بتائیں, جی جی آپ بتائیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ معاملہ اخلاقی بھی ہے, بین الاقوامی بھی ہے. ایگزیکٹ سافٹ ویئر کمپنی پہ تحقیقات جو ہو رہی ہیں, کہا جاتا ہے کہ کالا دھن جو ہے اس کو سفید کرنے کے لیے یہ کاروبار چلتا تھا. اگر ایسا ہے, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو پیسہ استعمال کیا گیا تھا بول ٹی وی چینل کو شروع کرنے کے لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے چینل کو چلنا چاہیے؟
دیکھیں جی, بہت سے لوگ کالا دھن سفید کرنے کے لیے اس انڈسٹری میں آئے جن کا صحافت سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا, اور کوئی پوتر لوگ نہیں ہیں جو بھی ہیں اس انڈسٹری میں, ان چند ایک کو چھوڑ کے جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, جنہوں نے اسٹرگل سے اپنی انڈسٹری میں فلورش کیا پرنٹ میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا تک. لیکن اب جو ڈیکلریشن دیے گئے, لائسنس دیے گئے جنرل پرویز مشرف کے دور میں, اس وقت میں پی ایف سی کا صدر تھا اور میں نے بہت ریزسٹ کیا کہ خدا کے واسطے ان لوگوں کو چینل کا چلانے کا لائسنس دیا جائے جن کا کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہو. کوئی ڈرگ مافیا ہے, کوئی لینڈ مافیا ہے, کس نے لینڈ مافیا سے دولت کمائی ہوئی وہ پروٹیکشن کے لیے اس نے چینل چلا لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گن تو پہلے سے پڑ گیا تھا, لیکن یہ ایکسٹریم پہ معاملہ چلا گیا ہے. اور جب یہاں پہ مالکان کے درمیان بہت زیادہ ٹسل ہے, وہ ورکر کے معاملے میں تو اکٹھے ہیں لیکن دوسرے معاملات میں ان کا بہت زیادہ آپس میں تناؤ ہے, کھچاؤ ہے, تنازعات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ जब आप किसी चैनल को डैमेज करेंगे तो वो भी रिएक्शन अपना शो करेंगे।
एक और सवाल का जवाब दीजिए परवेज शौकत।
जो फॉरन, आप देखें मेरी एक बात सुन लीजिए,
जी जी जी,
जो फॉरन मीडिया है ना वो अनछंट नहीं मारते, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिस अखबार ने ये स्कैंडल का इंकशाफ किया है, यकीनन उनके पास सॉलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, तभी उन्होंने इस इशू को बहुत हाईलाइट किया। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई रिस्क लेता है, कोई अखबार बंद हो सकते हैं इस तरह के इशूज में। तो अभी अदालत में शुएब शेख साहब को अपने अपना साबित करना होगा वो बेगुनाह है या उनका दो नंबर काम नहीं है, जाली वो डिग्रियां नहीं देते। लेकिन ऐसा ऐसा बातें खुल के सामने आ रही हैं, तो मैं तो मुझे यकीन है कि ये स्कैंडल गलत साबित नहीं होगा।
अच्छा, और आपसे यही सवाल है परवेज शौकत, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले बोल के नुमाइंदा एजाज खान ने उन सीनियर्स की तारीफ की, कामरान खान, अजहर अब्बास, हालांकि वो बोल छोड़ के चले गए हैं। आप बताइए, आप भी जानते हैं कि ये लोग बहुत ही नुमायां सहाफ़ी हैं, क्या बोल को छोड़ने की वजह से, क्योंकि हमें भी पता है कि तहकीकात अब शायद एफबीआई की तरफ भी जा रही है, क्या जिस वक्त पर इन साहिबान ने बोल को छोड़ा इसकी वजह से इनकी साख मुतासर होगी?
जी बेशक, इनका वहां से जानने से भी साख मुतासर हुई, जियो से जानने से भी, और चूंकि
इनकी साख मुतासर होगी या नहीं
चलने में काफी टाइम लगा, अभी तक उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। और आपको पता है जो चैनल पे एक दफा आ रहे हों एंकर्स वगैरह, वो तो पब्लिक में रहना चाहते हैं, और कई इससे पहले छोड़ के वापस जा रहे थे और चले गए हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो डिले किया गया चैनल को निकालने में, बहुत सी उसमें भी सुनने में आ रही बहुत सी बातें कि अभी इनके पास
नहीं। आप आप आप, आप सवाल नहीं समझे, मैं पूछ रही हूँ अगर इन सीनियर एंकर्स की साख मुतासर होगी या नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ। मैं सवाल पूछ रही हूँ इन सीनियर एंकर्स की साख मुतासिर होगी या नहीं, कि ये बार बार चैनल्स तब्दील करते हैं जब इंक्वायरी होती है इस किस्म की।
इनकी साख बुरी तरह मुतासिर हुई है, और ये जो ब्लेम लगा है करप्शन का और चार्ज का, ऐसे अदारे में चले गए जो करप्शन की दौलत से चैनल चला रहा था, तो यकीनन साख मुतासिर, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया कि जो हमारी बची खुची साख है उसको बहाल रखें। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे लोग थे जो जियो को छोड़ के, दूसरे चैनलों को छोड़ के वो वहां गए, और बिल आखिर उन्हें लौटना पड़ा। यही काफी है बड़े बड़े साथियों के लिए कि वो ऐसे ऐसे
कौन साहब बोल रहे
हैं जब उनके दारे पे बहुत
अच्छा खालिद आ रहे हैं। जी जी जी, अरान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए। जी
साबित, जो एग्जैक्ट कंपनी को चैनल की तरफ लाने वाला भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा साथी है, जिन्होंने कहा कि अब आप इस काम में आए और अपने उल्टे सीधे कामों को जो है ना सपोर्ट करें एज ए फॉरन मीडिया की तरफ से। मतलब इस पूरे आइडियाज के अंदर इसका मास्टर माइंड जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा साथी है, ये मेरी जो है ना बड़ी कदर हद तक जो है ना सही मालूम है।
मेरे आप बड़े प्यारे दोस्त हैं, साथी हैं, तो उस साथी का नाम भी नहीं, यहाँ जितने पैसे वाले लोग हैं उनके साथ कोई ना कोई साथी जो बेरोजगार है वो अटक जाता है, और वो कहता है जनाब आप लेके आए चैनल, आप अखबार निकालने देखें फिर होता क्या है, आपके पास गुजरा और गुजराए आजम आपके पास आया करेंगे, तो इसका तो चैनल किसने निकलवाया है, तो उसको नौकरी की जरूरत होगी, तो उसने कहा चैनल निकाल दे। मेरा ख्याल नाम भी बताएं उसका, उस बड़े साथी का।
जी अरान साहब, अगर आप
नाम सब समझ गए होंगे नाम के, वो किस चीज का जो है ना इनको इस काम में डाला। मगर साथ में शोकत साहब भी आपने जिक्र किया कि जो है साफी इदारों को दुनिया भर में जो है ना प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक के लेसन नहीं दी जाती, मगर पाकिस्तान के अंदर ये अमेरिका में, इंडिया में, किसी जगह भी ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया वालों को इलेक्ट्रॉनिक की तरफ लाया गया। पाकिस्तान में ये निज़ाम भी है कि प्रिंट में भी वही लोग हैं और इलेक्ट्रॉनिक में भी वही लोग हैं, इस तरह की बातें तो होती रहेंगी। जरूर नहीं होता कोई अच्छा काफी इदारा या अच्छा चैनल चला सकता है। जियो माशाल्लाह का कामयाब रहा जंग की वजह से, मगर नवाए वक्त का चैनल वक्त बहुत बुरी तरह नाकाम रहा और खबरें अखबार का चैनल बहुत बुरी तरह नाकाम रहा। तो जरूरी नहीं होता कि कोई साफ़ी इदारा अच्छा चैनल जरूर कर सकता है।
जी जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे। एजाज खान, आपने इन दोनों साहिबान की गुफ्तगू सुनी, नज़र ये आ रहा है कि बोल का जो मामला है वो दिन पर दिन ज़्यादा मुतनाज़े बनता जा रहा है। इसके हवाले से आप बताइए, आप क्या तवक्को कर रहे हैं, क्या ये चैनल सामने आ सकेगा?
ये यकीनन ये अब तक जो बातें यहाँ हुई हैं या इससे पहले जो एक गुज़श्ता एक हफ्ते से हो रही हैं पाकिस्तान में, वो स्पेकुलेशन और र्यूमर बेस्ड है सारी। इनका फ्यूचर क्या होगा ये कल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मतलब जो जर्नलिस्ट वहाँ 2200 से 2500 के दरमियान जो जर्नलिस्ट बोल से वाबस्ता है इस वक्त पाकिस्तान में, वो पुरुमीद है, उनका ये अजम है कि हम बोल लेकर आएंगे। तो इसमें यकीनन अगर खुदा न खासा ऐसा कोई वाकया हो जाता है कि बोल नहीं आता, तो यकीनन ये पाकिस्तान में जो मीडिया इंडस्ट्री शदीद बुरान का शिकार हो जाएगी। यहाँ 2200 खानदान, 2200 फैमिलीज और उनसे वाबस्ता जो हजारों लोग हैं वो जो है इसका विक्टिमाइजेशन उनकी होगी। इस वक्त मैं एक चीज आपको बताऊं कि बोल या एग्जैक्ट जो मुंसलिक लोग हैं वो रोजाना हजारों की तादाद में जो है एग्जैक्ट के ऑफिस के बाहर धरने दे रहे हैं। किसी पाकिस्तान के मीडिया में एक खबर तक, ना प्रिंट मीडिया में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर आई है कि ये लोग धरने दे रहे हैं या इनके वहाँ एक आम कारकुन की क्या सूरत हाल है। तो वो उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें हिरासत किया जाए, आप जो ना प्रॉपर तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। ये प्री मेच्योर है ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये हम सब स्पेकुलेशन और र्यूमर्स पर हम बात कर रहे हैं। कोई कंप्लेनेंट पाकिस्तान में एग्जैक्ट के खिलाफ नहीं है, कोई इस ऐसी कंप्लेन कोई FIR पे दर्ज नहीं हुई। जब इन चीजें मामले सामने आएंगे उसके बाद मतलब चीजें खुलेंगी तो ये मतलब आने वाला वक्त बताएगा कि बोल आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा। लेकिन मतलब जो उससे वाबस्ता साथी हैं, लोग हैं और मीडिया मैन है, सीनियर मीडिया मैन है, वो तो यही ऐड करके आए हैं कि बोल हम लेकर आएंगे।
अच्छा जी,
बात करना चाह रहा हूँ।
जी जी,
इसमें तो कोई शक नहीं कि मैंने पहले अर्ज किया है कि बोल के ना आने की वजह से बहुत बड़ा बुरान पैदा होगा इस इंडस्ट्री में और बड़े बड़े साथियों को छोड़ के उनके तो शायद और भी कारोबार होंगे। जो हम बेचारे दूसरे जर्नलिस्ट हैं जिनकी वजह से चैनल चलते हैं, वो उनकी बेरोजगारी जो है वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है और मसला है और यूनियंस के लिए भी। और हमारी तो ख्वाहिश थी के बोल आता चैनल ताकि कंपटीशन की फिजा होती, लेकिन वो किसी और का कसूर तो नहीं है। इसको इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बहरहाल अगर र्यूमर है अल्लाह करे,
ये ऐसी बात नहीं कि घर के चिराग से इसको आग लगी है, ये प्री मेच्योर है। आप भी मतलब जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि कोई FIR दर्ज हुई है, कोई सिर्फ एलिगेशन पे एलिगेशन चल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी छपती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस पर हरकत में आ जाती है, तो ये कौन सी कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ 1997 से एग्जैक्ट काम कर रही है। तो अगर कोई उसके खिलाफ इस तरह की बात थी तो 15-20 साल के बाद तक जो ना बयान को कोई सबूत नहीं मिले हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये
सब। आपकी बात 100% दुरुस्त है कि इंक्वायरी शफाफ होनी चाहिए और अगर मैज इल्जाम हैं तो वो उसके क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए और अगर इल्जाम दुरुस्त हैं तो मैं कहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये
जी जी एजाज खान,
एक शख्स बात करे एजाज खान, आप बात कीजिए।
जो फैमिली जिसके साथ मुंसलिक है, वो फैमिली जो जहनी तौर पर मेंटल टॉर्चर हो रही है कि एग्जिट के खिलाफ जो स्कैंडल्स आ रहे हैं उससे ये कंपनसेट कौन करेगा, इसका क्या जवाब होगा?
जी आप बात कीजिए, आप परवेज शौकत।
देखें बात है, ये तो मालकान के दरमियान जंग है, हमारा तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये मालकान जो है एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी करते रहे हैं और करते रहेंगे, उनके दरमियान कोई इक्वेशन नहीं है। सिर्फ इक्वेशन इस बात की है कि वर्कर को तनहाई ना दी जाए, वर्कर को कान पकड़ से निकाल दिया जाए, वर्कर के लॉस के लिए लॉस पे इम्प्लीमेंट किया जाए ना किया जाए, तो ये तो अरसा दराज से सिलसिला चल रहा है, तो हम तो उसमें पार्टी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी अगर हो रही है, अगर वो बेगुनाह है तो उनको बेगुनाही साबित करना होगी। और हमारी ये ख्वाहिश है जो छोटे हमारे साथी हैं, जो जैसे 2200 आप फरमा रहे हैं एजाज साहब, तो हमें उनसे दिली हमदर्दी है, हमने कब कहा कि बोलना निकले।
अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस मोड़ पे हम आप तीनों हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे बोल टीवी ब्यूरो चीफ क्वेटा एजाज खान, उनके साथ थे चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराई, और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सरबरा और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुशीर परवेज शौकत। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज।
बहुत शुक्रिया जी।
इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सहाफत में भोंचाल की कैफियत पर, जो एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर कंपनी पर तहकीकात के नतीजे में पैदा हुआ है। इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार, जो क्वेटा में हैं, और अनकरीब उनके साथ होंगे ARY चैनल के तज्ज़ियाकार मुशीर अदनान आदिल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको शोएब अहमद शेख की एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एग्जैक्ट के सरबराह हैं और एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर कंपनी पर तहकीकात हो रही हैं, जिसकी वजह से हम इस पर बहस कर रहे हैं कि उनके साथ जो टेलीविज़न स्टेशन है बोल टीवी, उसकी नशरियात किस तरह मुतासर होंगी। तो आइए सुनते हैं इस मौके पे कि शोएब अहमद शेख एग्जैक्ट के बारे में क्या कहते हैं।
इस इन इन सेटों के प्रेशर पे हुकूमत ने एक इंक्वायरी की कोशिश की, क्या कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए, हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब एक इंक्वायरी का तरीकेकार होगा कि भाई ये बातें हम आपसे ये बातें जानना चाहते हैं, आप इन बातों का जवाब दें और ये बताएं, एक इंक्वायरी का तरीकेकार है। एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जाए जो पार्शियल हो, पार्शियल ना हो, इम्पार्शियल, न्यूट्रल हो, और वो एक तरीकेकार पे अमल कर, ना के अभी कल एक बात हुई है एक गैर मुल्की अखबार पे, उसकी बेसिस पे बस उन्होंने चीज इंक्वायरी की बात नहीं की, इतने में टीम पहुंच गई और उसने कहा जी टीम में इस्लामाबाद ऑफिस में हमारे आके और टेररिजेशन शुरू कर दी, ये बताओ वो कंप्यूटर, ये वो, उसको उठा इसको, और वो पूरा एक टेरर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया और कराची के अंदर भी ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। मकसद क्या था, मकसद क्या है इस बात का? मकसद बड़ा साफ है सेठ का कि जी बोल को चूंकि एग्जैक्ट फंड कर रहा है तो एग्जैक्ट को क्रिपल किया जाए, बड़ा सादा है, और किसी तौर इसको काम ना करने दिया जाए, इसके इस्लामाबाद ऑफिस को बंद करें, कराची ऑफिस को बंद करें, टेररिजेशन करें, लोग आए ना यहां, लोग बिल्कुल घबरा जाएं, एक बिल्कुल न्यूट्रल इंक्वायरी जरूर की जाए, उसको जरूर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्या है, हम जो क्या कर रहा है भाई एग्जैक्ट जरूर जाने आप, एक सही तरीके कार के तहत, और इनकी साजिश का हिस्सा ना बने, उसको अलग से देखें। और उसके अलावा जो है बोल है उसका हक है, मीडिया इंडस्ट्री में बोल आएगा और उसका अपना काम है, उसको करने दिए देना चाहिए। इस पूरी चीज का मेरा ख्याल है किसी भी हुकूमत वक्त को, कहीं भी, चाहे वो किसी मुल्क की हो, ये तो फिर भी पाकिस्तान की हुकूमत वक्त है, मैं समझता हूँ कि आप इंशाल्लाह, मेरी एक्सपेक्टेशन भी है हुकूमत से कि वो फौरी तौर पे इसका नोटिस लेगी कि जिस किस्म की टेररिजेशन चल रही है मीडिया पे इस वक्त, इसका नोटिस लिया जाएगा और इस पर भी एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी सहावत हो रही है, कौन सा टीवी है ये पाकिस्तान का, और इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए, और एक इंक्वायरी हमारे ऊपर हो यानी कि एग्जैक्ट पर, और देखा जाए वो क्या कर रहा है। ये दोनों चीजें बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बोल आना चाहिए और सबको काम करना चाहिए, ये बस मेरी रिक्वेस्ट है।
जी, ये थे एग्जैक्ट के सरबरा शोएब अहमद शेख। लेकिन इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि क्योंकि बोल पर जो इंक्वायरी हो रही है एग्जैक्ट की इंक्वायरी के बाद, इस हवाले से पूरी जो सहाफती बरादरी है वो किस हद तक बट गई है। तो हम चलते हैं क्वेटा, जहां से सीनियर सहाफी शहजादा जुल्फिकार लाइन पर हैं। और शहजादा जुल्फिकार, आपको खुशामदीद।
थैंक यू जी।
तो सबसे पहले तो ये बताइए, आप भी गहरी नज़र रखते हैं सहाफत पर और आप भी जानते हैं कि जियो और बोल की जो नशरियाती टीवी चैनल्स हैं इनके पीछे रियासती इदारे हैं। अब आप क्या देखते हैं कि ये जो इस वक्त बोल टीवी के पीछे नज़र ये आ रहा है, ये जो इंक्वायरी हो रही है एग्जैक्ट की वजह से, लगता है कि बोल टीवी का सितारा जो है वो बैठता जा रहा है, तो क्या रियासती इदारों ने बोल टीवी पर से अपना हाथ हटा दिया है?
फिर असल में देखिए नफीसा, अगर उनका हाथ था भी, और जिस तरह हम सुनते आए हैं और बहुत से हमारे दोस्त जो अस्करी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आईएसटीआर खसूसन, उनसे बहुत से हमने बातें भी की उनसे, और उनको भी इस बात पर तशवीश है। वैसे तो वो इनकार करते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर हो भी, क्या वो अस्करी अदारे या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है किसी ऐसे किसी अदारे के साथ अपना नाम या वो साथ खड़ा होना पसंद करेंगे जिसके साथ ये आ रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैंडल में वो इन्वॉल्व है और उन्होंने पैसा हासिल किया कि बैरून पुलिस जो है वो डिग्रियां चेकिंग की, ये अब तक जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन थोड़ा बहुत एक मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन से पहले जिस चीज पर इन्वेस्टिगेशन होती है, जिस चीज पर इन्वेस्टिगेशन एस्टेब्लिश करती है, उस हद तक मेरे ख्याल में इतना तो हो गया है कि वाकई कुछ ना कुछ जरूर है। अब वो शायद जो कंपटीटर्स हैं और जो वो शायद उनको आने नहीं दे रहे हैं या उससे पहले उनका बसा बिठाना चाहते हैं, ये जरूर है कि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है उस चीज को उछाल रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि वो कुछ ना कुछ जो है वो उसमें है। अब उनसे डिपेंड करता है कि क्या इंटरनेशनली थर्ड वर्ल्ड की किसी एक कंट्री में एक ऐसी कंपनी है और वो न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबार में वो छपा और उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसमें चीजें भी आ रही हैं, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर बिल्कुल हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि वो बिल्कुल उसको सपोर्ट कर रही थी और कुछ टीवी चैनल्स के खिलाफ उनको खड़ा कर रही थी, तो क्या वो अपने आप को वो पसंद करेंगे कि अपने साथ उनका नाम आए? ये मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर पहले वो थे भी, अगर हम फर्ज कर लेते हैं पहले थे भी, अब शायद वो अपना नाम पसंद ना करें कि उनके साथ रहें, अब प्रॉब्लम आएंगी उनके लिए। क्या वक्त है कि ये चीज एक उसका तातुल का शिकार हो और साल बाद डेढ़ साल बाद ये चीजें वो और क्लियर हो और उसके बाद लोगों के सामने आए कि नहीं जी गलत बयानी थी। देखें, आपने तो देखा कि जिस ये शोएब सिद्दीकी जिस तवको का इजहार उस गवर्नमेंट से कर रहे थे, उसी गवर्नमेंट के वजीर ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने इंक्वायरी भी करवा दी और लेटर भी लिखे और एक चीज एफआईआर भी दर्ज करने का फैसला कर लिया। अगर ये चीज बिल्कुल ही ना होती तो शायद मेरे ख्याल में अभी तक उसका रिजल्ट आ चुका होता, और अगर केस बहुत ही कमजोर होता तो वो अदारे अगर उनके पीछे हैं भी वो खुल के सामने आ जाते और तमाम चीजों को दबाया जा सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जरा मुश्किल उनके लिए है, लेकिन उनका भी टेस्ट केस है। जिस तरह बताते हैं कि एग्जैक्ट कंपनी बहुत ही एक टैलेंटेड लोगों की है, अब उनके लिए भी बहुत बड़ा एक टेस्ट केस है कि वो किस तरह इस तमाम क्राइसिस से निकलेंगे। आना तो उन्होंने है, बोल टीवी आना है, बोल टीवी को शायद कानूनन कोई रोक नहीं सकता। एग्जैक्ट को रोक सकता है, एग्जैक्ट के तमाम मामला को बंद कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कंपनी का कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उसको ऑन एयर आने से रोके। और जहां तक हमारे दोस्त इससे पहले भी प्रोग्राम सेगमेंट में कह रहे थे, जाहिर है एक वर्कर का मसला है और 2200 वर्कर एक उनका भी एक प्रॉब्लम है कि उनके साथ क्या होगा और किस तरह करेंगे। बहरहाल ये बहरहाल कब्ज वक्त है, ऑन एयर जाने के बाद नए लोग उनको गिफ्ट करेंगे, नए जिन जिन लोग ने छोड़ा है उस स्पेस को मेरे ख्याल में फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से जो बहुत लोग बैठे हैं वो फिल करेंगे और उसके बाद उसकी जगह जो है बाहर से और लोग आएंगे।
जी जी।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो हो जाएगा। जी
इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अदनान आदिल हमारे साथ हैं, सियासी तजियाकार हैं और वो भी मीडिया सीन को बखूबी जानते हैं। अदनान आदिल, आपको खुशामदीद।
बहुत शुक्रिया जी आपका।
तो यही सवाल जो मैंने किया था इसको आप जरा आगे बढ़ाएं। आप भी जानते हैं कि एग्जैक्ट तहकीकात की वजह से बोल की नशरियात पर एक सवालिया निशान पड़ गया है और अभी भी हम आधे घंटे से यही बात कर रहे हैं कि आया बोल मार्केट में आएगा या नहीं। ये बताएं कि कुछ अरसा पहले हमने देखा था कि जियो ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसको ISI ने निशाना बनाया। अब नज़र ये आता है कि चीज़ें जियो के फेवर में जा रही हैं। आप क्या देखते हैं, क्या तब्दीली आ गई?
देखिए तब्दीली तो एक सिर्फ ये आई है कि बोल जो है वो जिस उठान के साथ आना चाहता था शायद वो ना हो सके। आएगा तो वो जरूर, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टी मिलियनर्स हैं, वो अरबों रुपए हैं। अगर उनका छोटा मोटा कोई छोटा मोटा नुकसान हो भी जाए तो उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तनासुब के हवाले से। बोल तो मुझे यकीन है कि आएगा, ऑन एयर होगा और चार पांच लोगों ने छोड़ा है तो उनकी जगह 40-50 लोग उसको ज्वाइन करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास इतना तजर्बा है, इतनी अहलियत है कि वो चैनल को लॉन्च कर सकें। अलबत्ता उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कुछ मुतासिर हुई है, साख मुतासिर हुई है और उसका उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका जियो को कोई सच फायदा होगा, क्योंकि जियो जो है उसने पूरी एक इंस्टीट्यूशन को, आर्मी के इंस्टीट्यूशन को अपनी कैंपेन का हदफ बनाया हुआ था और उसके खिलाफ जो एक्शन हुआ वो एक शख्स की नहीं पूरे एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुआ। तो जियो जो है वो नंबर वन रेटिंग में जो चैनल था और दूसरों से बहुत आगे था, अब वो नंबर तीन नंबर चार पोजीशन पर जा चुका है और वो मुझे नहीं लगता कि उसकी रिकवरी जो है वो इसके बोल के किसी हद तक डैमेज होने से उसकी रिकवरी हो जाएगी, इसके चांस मुझे नहीं लगते।
अच्छा।
अलबत्ता ये जरूर है कि जो बोल से एक हाई पेडेस्टल पे उसने आना था बहुत बड़े लेवल पे, उसकी साख जो है अब किसी हद तक मजरूह हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में हमें जहन में रखना होगा कि करप्शन और स्कैंडल जो है यहाँ की पब्लिक लाइफ का आम हिस्सा है। यहाँ पे कौन सा सियासतदान ऐसा है जिसके बारे में बैंकों के लोन खा जाने के इल्जाम नहीं है, जिसकी जिंदगी जो है करप्शन स्कैंडल से खाली है? कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बड़ा सियासी लीडर जिसपे इस तरह के इल्जाम ना हों, लेकिन इसके बावजूद वो सरवाइव करते हैं। यहाँ पे एहतसाब और कानून का मौसर इतलाक बहुत कम होता है। आप ये देखिए कि हमारे जो दूसरे चैनल्स भी हैं उनके बारे में भी शदीद उनके बारे में भी इल्जाम मौजूद है। चैनल के मालिक के बारे में है कि उसने 2-3 अरब रुपए टैक्सों के हजम किए हुए हैं कई बसों से और वो वापस नहीं कर रहे हैं। और एक दो जो मालकान हैं बड़े चैनल्स के उनके ऊपर नैब के केसेस रह चुके हैं। तो यहाँ पर एक आम अमूमी तासर है कि जो मीडिया में बहुत ज्यादा पैसा आया है, सरमायाकारी हुई है, इसमें बहुत सा काला धन भी शामिल है, टैक्स चोरी का पैसा भी शामिल है। लोग अपने कारोबारी लोग अपने मुख्तलिफ कारोबारों को तहफ्फुज़ देने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं, अखबार लॉन्च कर रहे हैं, मीडिया ग्रुप्स लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बोल की क्रेडिबिलिटी जो है अब वो तो अब इस एग्जैक्ट के स्कैंडल की वजह से उस पर सवालिया निशान लगा है, लेकिन जो दूसरे मीडिया चैनल्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी पहले से सवालिया निशानात मौजूद हैं। तो
जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं ये चाहती हूँ कि शहजादा जुल्फकार को इसी मोड़ पे ले आऊं। इसमें शहजादा, आप भी जानते हैं कि एक जमाना था जब सहाफत में इस हद तक पैसा नहीं आया था, उस जमाने में सहाफी ज्यादा मुतहद नजर आते थे और एक तरह से जो एस्टेब्लिशमेंट है जो करना चाहती थी उसका भी मुकाबला करते थे। आपने क्या देखा कि ये जो बड़ा पैसा आया और जिसकी वजह से टीवी चैनल्स आए, इसकी वजह से किस हद तक गलत मैसेज इस वक्त जा रहा है अवाम में?
देखें, अवाम तो इस वक्त मीडिया से बहुत ही आप नाराज कहने, आप उनको एक हद तक कहीं पर शऊर देना अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मीडिया को देखें, मीडिया एक कारोबार बन गया है और आपसी तंजीमें बदकिस्मती से आपस में लड़ाइयों की वजह से वो बहुत कमजोर भी हैं, और उनके एक आप देख लें कि एक ऐसा तबका है कि जिनको जॉब अगर मिल गई टीवी में और वो जाके टीवी में चले गए और टीवी में ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर का वो कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर भी इस तरह के एक एग्रीमेंट है, और घुमा फिरा के वो फेवर है, मालकान का ही फेवर है, स्टेट का ही फेवर है और स्टेट को ही फेवर करता है। उसमें एम्प्लॉय जो है उसका कोई उसमें जॉब सिक्योरिटी है नहीं, बड़े बड़ी तनख्वाहों पर वो चले गए हैं, वो जाकर वो बिल्कुल एक वो ट्रेड यूनियन और उनके लिए जो वर्कर के लिए बात करने वाला वो कुछ भी नहीं रहा ऐसा। अच्छा फिर ये है कि आप देखें कि अदनान ने बिल्कुल ठीक बात कही कि एक तो पैसे वैसे यहाँ वहां से आ गए हैं, और एक मालकान ने देखा, एक स्टेट ने देखा, जो साहूकार है जिसके पास पैसा है और वो करना चाहता है इस पैसे को, मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है, उसने आराम से जो है वो एक चैनल लॉन्च कर दी और उसके बाद ही वो कर दिया। अदनान है इसमें, आप भी शेयर जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं, मुझे तो बहुत ही एचआर के लोगों ने बताया कि बड़े से बड़े चैनल का टोटल आमदन जो है वो उनकी जो रेवेन्यू है वो इसकी नहीं है, वो कतन जो है वो यहाँ से वो नहीं कमाता, बहुत कमाने के उनके कई जरिए हैं और ये सारा कुछ होता है। लेकिन एक बात मैं अदनान के खिलाफ करूंगा कि जो को वो स्पेस नहीं मिलेगी, वो स्पेस कतन नहीं मिलेगी, लेकिन कम अज कम इतना जरूर होगा कि जियो को एक अपने आप को स्ट्रेंथन करने में उसको टाइम मिल गया। और इस मुल्क में वैसे भी माफी तलाशी देखें नफीसा, माफी तलाशी का भी इस टाइम भी नहीं पता चलता कि माफी तलाशी कब हुई है, मुकमुका कब हो गया, मामला कब रफा दफा हो गया, ये भी हो सकता है और ये चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक पॉइंट को इसको वो करूंगा कि अब अगर उनकी अगर हम फर्ज कर लें कि उनकी बैकिंग से अगर वो आपका बोल आता है तो शायद अब उस तरह न आए जिस तरह वो खुल के एक हम सोच रहे थे, एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, खुल के वो उनके पीछे होंगे और वो खुल के जो है वो सारा कुछ हर चीज पर वो इन्फ्लुएंस करेंगे। अब बहुत ही मुश्किल होगा वो पावर कॉरिडोर में और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जाने के लिए उनको मुश्किलात
जी। और ये सवालिया निशान अभी तक है कि आया बोल की नशरियात आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि हालांकि आप दोनों हजरात कह रहे हैं कि आएंगी, लेकिन पिछले सेगमेंट में हमारे साथ जो भी सीनियर लोग थे उनका ये कहना था कि बहुत मुश्किल लगता है कि ये आएगा। बाहर कैफ आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुजाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सहाफत में भोंचाल की कैफियत के बारे में जो एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर कंपनी पर तहकीकात के नतीजे में पैदा हुआ है। हमारे साथ सीनियर सहाफी शहजादा जुल्फिकार हैं जबकि एक टेलीविजन चैनल के मुशीर अदनान आदिल हैं। हमें जिन लोगों ने कॉल किया, मलिक शरीफ खान, मुरीद खान मियावाली से और अल्ताफ खान औरकज़ई एजेंसी से। इस वक्त एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी, और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/YasminJamilVOAUrdu।
जी हम बात कर रहे हैं कि बोल टीवी नशरियात की वजह से सहाफी और सहाफत किस तरह बट गई है, लिहाजा अगर आप लोग भी इस डिबेट में शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। हमारे मुफ्त कॉल करने का नंबर है 0800-777-89-0800-777-89। एक कॉलर बहुत देर से होल्ड पे हैं, मुरीद खान मियांवाली से। जी जनाब कहिए।
जनाब से अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि बोल के मसले पर ये जो सीनियर लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, इनको انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ فیس کرتے اور اپنے آپ کو صاف کر کے پھر نکلتے. باقی سیاست جو ہے پاکستان میں ایک کاروبار ہو چکا ہے. یہ دو دو آدمی ٹکے کے آدمی آ کر چینلوں پر ٹاک شو کرتے ہیں اور جس کی مرضی ہے پوڑی اچھالتے ہیں, جس کی مرضی ہے آسمان پر لے جاتے ہیں, جس کی مرضی ہے زمین پر لے جاتے ہیں. تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی یہ پیسے بنانے کی مشین بنا دی ہے انہوں نے. یہ صحافت کو جو ہے انہوں نے بیچ دیا ہے. یہ وہ صحافی کبھی میں نے دیکھا کہ اخبار کوئی بند ہوا ہے؟ کبھی دس سال ہو گئے ہیں کوئی اخبار بند نہیں ہوا, کوئی رسالہ بند نہیں ہوا. تو یہ صرف اور صرف پیسے لے کر کام کرتے ہیں. شکریہ.
شہزاد ذوالفقار, اشارہ جو ہے وہ ہوا ہے ان سینئر صحافیوں کی طرف جنہوں نے یہ ایک چیز ریلائز کی کہ ممکن ہے کہ ایف بی آئی بھی تحقیقات میں شامل ہو جائیں, اور اس وقت انہوں نے طے یہ کیا کہ وہ بول چھوڑ کر چلے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی ساکھ متاثر ہوئی؟
ضرور ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شاید انہوں نے ریئلائز کیا کہ آگے چل کر اور شاید اور پرابلمز ہو جائیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا نکل آئے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. ابھی جو ورکر جن کی یاد خان بات کر رہے تھے یا اور لوگ بات کر رہے تھے, ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اتنے وہ نہیں ہے, آپشنز ان کے لیے نہیں ہے, اور بڑے لمیٹڈ آپشنز ان کے لیے ہوں گے. اگر وہ نکلیں گے بھی تو بڑے مشکل سے کسی جگہ وہ اکوموڈیٹ ہوں گے. اب جو جن لوگوں نے چھوڑا ہے ان کے لیے دیکھیں نا, وہ نون لوگ ہیں اور کسی بھی چینل میں وہ اکوموڈیٹ آرام سے ہو سکتے ہیں. اگر نہ بھی ہوں, اس سے پہلے جن پوزیشنز پر وہ رہے ہیں پیسہ کافی تھا اور اتنا پیسہ تھا کہ وہ خود آرام, پیسہ ان کے پاس ہے ماشاءاللہ, اور کہ وہ آگے آرام سے سال ڈیڑھ سال نکال لیں, ورنہ وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے سب سے پہلے ایک بندے نے اگر کامران خان صاحب نے کیا, اس کے بعد پھر لائن لگ گئی, انہوں نے ریئلائز کیا. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اتنے منجے ہوئے لوگ ہیں, سیاست پر بحث کرتے ہیں اور ٹی وی میں وہ تمام دنیا کی سیاست کو اور یہاں کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور بہت سی بڑی بڑی مطلب یہ ہے کہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن کیا انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ ایک اتنے پیکیجز, بڑے بڑے پیکیجز وہ ان کو دے رہے ہیں, کیمرہ مین کو دے رہے ہیں کسی ٹی وی چینل میں. ورکر کے لیے تو بہت اچھا ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا میرے خیال میں یہ لوگ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ اتنے بڑے لوگ, بنجے ہوئے لوگ, انہوں نے ذرا بار بھی نہیں سوچا کہ یہ اتنے بڑی بڑی پیکیجز دے رہے ہیں, یہ پیسہ آ رہا کہاں سے ہے؟
بالکل
ان کا پیسہ, یہ کوئی یہ نہ ہو کہ ہم آگے چل کر ہمارے لیے پرابلمز ہو اور واقعی یہ منی لانڈرنگ کا ہو. منی لانڈرنگ سے یہ بات کرتے ہیں, شاید ان چیزوں نے جو اپنے یہ خود تجزیے کرتے تھے, میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں میں ان کو جھنجھوڑا اور یہ شاید جلدی سے انہوں نے چھوڑا, اور چھوڑنے کے بعد جو ہے اب شاید وہ خود اپنے دفاع بھی کر رہے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پر وہ بات بھی کرتے ہیں اور شاید لڑ بھی جاتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ اینکر پرسن سے. تو یہ ایک پرابلم میرے خیال میں ان کے لیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک وقت پر بھی چھوڑا, کیونکہ آگے چل کر اگر کوئی اور چیز ثابت ہو جاتی پھر میرے خیال میں ان کی ساکھ بہت متاثر, ساکھ ابھی بھی متاثر ہے, لوگ تو پوچھتے ہیں جیسا میں نے کہا. جی
یہی سوال میں کروں گی عدنان عادل سے. عدنان عادل, آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ایگزیک کے جو چیئرمین ہیں شعیب احمد شیخ, وہ بہت مصیبت میں ہیں, اور بلکہ انہوں نے جس طرح سے گرفتاری سے قبل ضمانت کے لیے اپلائی کیا تو نظر یہ آتا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا. یہ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں بڑا سکینڈل ہے اس میں, کوئی یہاں امریکہ میں کوئی 30,000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی ایک مقدمہ کیا تھا ایگزیکٹ کے خلاف, اگر یہ سارا مقدمہ یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو وہ پیسہ کہاں سے رہے گا جو کہ بول کو فنڈ کر سکے؟ جی
بات یہ ہے کہ پاکستان میں 40 ارب روپے کی مارکیٹ ہے اشتہاروں کی میڈیا کے لیے, تو اس میں تو بول اگر لانچ ہوتا ہے تو اس کا بھی شیئر ہوگا. ہو سکتا ہے سیلریز ریشنلائز ہوں, جو بڑی بڑی سیلریز ہیں اس کی بجائے وہ کم سیلریز کر دیں اپنی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایک دفعہ چینل کا انفراسٹرکچر بن جائے, بیسک سارا اس کریٹ ہو جائے, تو اس کے بعد اگر وہ لانچ بھی ہو جائے تو اس کی سسٹینیبلٹی یہ کوئی مسئلہ ہوگی. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی تنخواہوں کی بجائے درمیانی تنخواہوں اور کم تنخواہوں پہ لوگ رکھے جائیں, تو ایک تو اس میں آپ کی بات کا پہلو ہے, دوسرے یہ کہ اس کو ثابت کرنا کہ ابھی تک ان کے الزامات ہیں ایگزیکٹ پہ پاکستان کی حد تک, اور ایف آئی اے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہیں مل سکے, اس لیے وہ ابھی تردد کا شکار ہیں کہ وہ ایف آئی آر درج کرائی جائے یا نہ کرائی جائے. اب ایف آئی اے نے ابھی تک ایف آئی آر بھی درج نہیں کی, تو یہ ابھی ساری باتیں مفروضوں, قیاس آرائیوں اور افواہوں پر مبنی ہیں جو کچھ بھی اس وقت ملک میں ڈسکشن ہو رہی ہے. تو اگر ایک اگر یہ واقعی جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مفروضے پہ مبنی ہم سوچیں کہ ان پہ الزام ثابت ہو جائے, ان پہ کوئی بہت جرمانہ بھی عائد ہو جائے, اور اگر یہ جو کہ ابھی تک خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کی دولت جو ہے وہ اربوں ڈالر میں ہے, تو اگر اس کا ایک پورشن نکل بھی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ بول کے اوپر کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ ایک بہت بڑے ٹیلی ویژن چینل کا بل جو ہے منتھلی سیلری بل وہ 5-6 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں تو فیزر اس کی جو چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, البتہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے, اور وہ پاکستان میں بائی اینڈ لارج سارے میڈیا کی ساکھ ہی خراب ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے جو صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں, کسی نے پیٹرول پمپ کھولے ہوئے ہیں, کوئی زمینوں کا کاروبار کر رہا ہے, کوئی جو ہے کسی کالم نگار کسی پرائم منسٹر کا تقریر لکھنے والا بن جاتا ہے, کوئی پرسنل سیکرٹری بن جاتا ہے. تو پاکستان میں صحافت جو ہے ویسے ہی بہت سے اخلاقی مسائل سے دوچار ہے, اور اس میں اوپر یہ بھی سب جب بول لانچ ہوا تھا تو سب کو پتا تھا کہ اس میں کچھ ایسا پیسہ ہے, جس میں داؤد ابراہیم کا بھی نام آ رہا تھا اور لوگوں کے بھی نام آ رہے تھے کہ جو کلین پیسہ نہیں ہے, وائٹ منی نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اس وقت جوائن کیا اس وقت ان کا ضمیر کہاں تھا, اور وہ جو اس دوران پچھلے 1.5-2 سال میں بغیر کام کیے 1.5-2 کوئی 80 لاکھ روپے مہینہ لے رہا تھا, کوئی 40-20 لاکھ روپے مہینہ لے رہا تھا, تو یہ کروڑوں روپے تو ان سے لے چکے ہیں. اگر یہ اتنے باضمیر ہیں تو وہ سارے کروڑوں روپے ان کو واپس کر دیں وہ, تاکہ ان لوگوں کو دیے جا سکیں جن بیچاروں نے جعلی ڈگری لی مبینہ طور پہ. تو یہ اخلاق, یہ جو بول کا بحران ہے, یہ اول تو بول لانچ نہیں ہوا, بول تو لانچ ہوگا, جو ایگزیکٹ کا بحران ہے یہ پورے پاکستان کے معاشرے کے جو ایک اس وقت صورت حال ہے اس کا, اس کی ایک بڑی, اس کا ایک بڑا سمبل ہے یہ کہ پاکستان میں جو گرے ایریاز میں کام کرنے والے لوگ ہیں, جو جن کی کردار اور جن کی ساکھ کسی قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے, ان کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے, اور جو مشکوک سرگرمیوں والے اور جن کے اوپر الزامات ہیں وہ ہر شعبہ زندگی پہ حاوی ہو چکے ہیں. تو یہ ایک
بالکل میرے پاس ایک منٹ ہے, لیکن شہزادہ ذوالفقار یہ بتائیے, لوگ جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں پہلے تو دیکھتے تھے کہ اینکرز کا ایک جھکاؤ ہوتا تھا, اب وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ اینکرز ہیں جو کہ مختلف چینلز میں جاتے ہیں اور جب ان پر تحقیقات ہوتی ہیں تو وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب ان کا خبروں پر جو ایمان ہے وہ کس حد تک ہل جائے گا؟
ہاں بالکل, دیکھیں اینکر پرسن تو اگر آپ پورے پاکستان میں اگر دیکھیں تو 3-4 ہی اینکر ایسے ہیں جو جرنلسٹ رہے ہیں اور واقعی وہ ایک تمام اس پروسیس سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. ادر وائز اینکر پرسن واقعی اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک معاشرے میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں اگر اینکر پرسن کی جو وہ چیزیں ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی یہ کہتے ہیں, جب ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں رات ہم فلانا ٹی وی میں دیکھ رہا تھا اور وہاں پر اینکر پرسن نے یہ کہا. یہ ایک وہ متاثر کیا ہے صحافت کو اینکرز نے کہ جو کبھی پہلے پروڈیوسر تھا وہ اینکر پرسن بن گیا. تو یہ میں نہیں کہتا کہ وہ, لیکن اس پروسیس سے اگر وہ آئے گا تو وہ بہتر انداز میں میرے خیال میں اس کو وہ بھی کرے گا, ورنہ ادر وائز یہ ایک پرابلم ہمارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے, اور یہ متاثر ہوگا آگے چل کے بھی یہ وہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات ہیں صحافت میں, اور انڈیپینڈنٹ جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اب خود اپنی جیسے ساتھی میرے کہہ رہے تھے جو شریک گفتگو تھے, بہت سے جو ہے اینکر ہیں وہ کہتے ہیں وہ
جی ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار اور ایک ٹی وی چینل کے مشیر عدنان عادل, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا بول ٹی وی کے بیورو چیف اعجاز خان کو جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تھے پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائن اور پی ایف یو جے کے سابق چیئرمین پرویز شوکر. इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर थे एल सैंटोस, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल और आयमन रिजवी। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।